हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेद इस बात से अनजान नहीं था कि कहीं ना कहीं शिवांशा ने उसके दिल में जगह बना ली है। तभी आज पहली बार उसे उस लड़की की याद आई थी जिसके साथ उसके मम्मी पापा ने उसकी सगाई तय की थी। वेद जब शिवांशा से शादी करके आया था तब भी उसके मन में कोई गिल्ट नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये रिश्ता बस दुनिया को दिखाने के लिए है। पर जैसे ही वेद को इस बात का एहसास हुआ कि वो भी शिवांशा को पसंद करने लगा है, तब उसे मेहिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वेद अलग अलग तरीके से बस शिवांशा को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो वेद के बजाय किसी अच्छे लड़के के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़े जो उसकी उम्र का भी हो। बातों बातों में वेद ने यहां तक कह दिया था कि वो कभी शिवांशा के लिए वक्त तक नहीं निकाल पाएगा। इसका सीधा उदाहरण उसके सामने था। वेद रात को अक्सर बहुत देर से घर आता था। ऐसे में उसके पास शिवांशा के साथ बिताने के लिए ठीक से समय तक नहीं बचता था। शिवांशा को गुड नाइट बोलकर वेद सो चुका था, जबकि शिवांशा अभी भी लाइट बंद होने के बावजूद उसके बेड के पास खड़ी उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। लगभग 5 मिनट तक कमरे में ऐसी ही शांति छाई रही। तभी अचानक वेद अपने बिस्तर से उठा और शिवांशा को घूरते हुए बोला, अब क्या पूरी रात यहीं पर खड़े रहकर बिताने का इरादा है? कम से कम टाइम तो देख लो। लेकिन मुझे बात करनी है। ज्यादा कुछ थोड़े ना मांग रही हूँ, थोड़ा सा टाइम तो मेरे साथ बिता ही सकते हो, शिवांशा ने मासूमियत से भरी धीमी आवाज में कहा। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो कब से इतनी डिमांडिंग हो गई थी कि इस तरह वेद पर खुलेआम अपना हक जता रही थी। शायद इसकी एक वजह ये भी थी कि ये हक अनजाने में वेद ने ही खुद उसे दिया था। वेद ने एक लंबी सांस ली और जवाब में कहा, अगर मुझसे बात करनी है तो कल सुबह समय से उठना। और हाँ, वेद सिंह चौहान की पत्नी बनना तो फिर भी आसान हो सकता है, लेकिन चौहान परिवार की बहू बनना थोड़ा मुश्किल है। कभी देखा है खुद को? ना सोने का कोई समय है और ना ही उठने का, जबकि आराध्या काम और घर की जिम्मेदारी कितने अच्छे से संभाल रही है। तुम उसकी थोड़ी हेल्प तो कर सकती हो ना? उनके रिश्ते के बीच आए इस फर्क को शिवांशा खुद महसूस कर सकती थी। एक वक्त था जब वेद यही चाहता था कि शिवांशा उसके परिवार के साथ किसी तरह का रिश्ता ना बनाए, और अब वो खुद उसे घर की जिम्मेदारी संभालने की बात कह रहा था। अचानक शिवांशा के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कुराहट उभर आई। उसने कहा, ठीक है, अगर मैं सुबह जल्दी उठी तो आप मुझसे बात करोगे ना? मतलब अभी भी तुम्हारा फोकस सिर्फ बात करने पर ही है। ठीक है, तुम जल्दी उठकर तो दिखाओ, वेद ने तंज भरे लहजे में कहा। अगर मैं नहीं उठ पाऊं तो आप मुझे जगा दीजिएगा, गुड नाइट, शिवांशा जल्दी से बोली और एक अच्छी बच्ची की तरह काउच पर जाकर लेट गई। शिवांशा की इस प्यारी सी हरकत को देखकर वेद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो वापस लेट गया। वेद सिर्फ शिवांशा को ही नहीं बल्कि दिल ही दिल में खुद को भी समझा रहा था कि उसे शिवांशा से दूर रहना चाहिए। कुछ ही देर में अपनी अपनी कश्मकश में खोए हुए वेद और शिवांशा को नींद आ गई। अगली सुबह अलार्म की आवाज के साथ वेद की नींद टूटी। उसने तुरंत अलार्म बंद कर दिया ताकि शिवांशा जाग ना जाए। वेद ने उठते ही शिवांशा के चेहरे की तरफ देखा, वो काफी गहरी नींद में सोई हुई थी। जल्दी उठना तुम्हारे बस की बात नहीं है बच्चा, तो आई होप कि तुम सब कुछ अपने आप समझ जाओ, वेद ने धीरे से कहा। उसके बाद वो एक्सरसाइज करने के लिए जिम एरिया में चला गया। थोड़ी देर जिम करने और नहाने के बाद जब वो वापस कमरे में आया तब सुबह के लगभग 8 बज रहे थे। शिवांशा ने वेद को जल्दी उठाने के लिए कहा था। वेद उसे जगाने के लिए उसके पास आया, लेकिन उसे उठाने से पहले ही वेद का हाथ हवा में ही रुक गया। वेद धीरे से बुदबुदाया, रात को सोने में काफी देर हो गई थी, ये तो बच्ची है लेकिन मुझे समझना चाहिए। ऐसा करता हूँ, इसे सोने देता हूँ, कोशिश करूंगा कि शाम को जल्दी आ सकूँ और इसकी बात करने की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा कर सकूँ। शिवांशा की सेहत का सोचकर वेद ने उसे जगाना सही नहीं समझा। उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाने के बाद वेद नीचे आ रहा था कि तभी उसे आराध्या मिल गई। कल वेद के कहने पर आराध्या ने भी सोचा था कि वो शिवांशा को थोड़े बहुत घर के काम सिखाएगी। वेद को देखते ही आराध्या ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया और बोली, भाभी उठ गई हैं क्या? मैं उन्हें जगाने के लिए ही जा रही थी। ज्यादा कुछ नहीं, पर वो सुबह किचन एरिया में कुक को इंस्ट्रक्ट करने का काम कर सकती हैं, आज रहने दो, वो एक्चुअली रात को सोने में काफी देर हो गई थी, वेद ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर जिस तरह आराध्या के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आई, उससे वो समझ गया कि आराध्या कुछ और ही सोच रही है। कोई बात नहीं, नई नई शादी में ऐसा अक्सर होता है। आपको याद हो तो मेरी और वंश की शादी के बाद मैं भी जल्दी रूम से बाहर नहीं आ पाती थी। मैं कुछ दिनों तक और संभाल लूंगी, आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा और वहां से चली गई। वेद ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपना सिर पकड़ लिया। पता नहीं इन लड़कियों के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, वेद ने गहरी सांस लेकर कहा। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर जमा थे। वेद के कहने पर कल से अक्षत ने बंसल ग्रुप में एक इंटर्न के तौर पर ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया था। हमेशा से अलग अक्षत आज फॉर्मल कपड़ों में तैयार था। उसे देखते ही वेद ने गंभीर आवाज में पूछा, कल का दिन कैसा रहा? ठीक ठाक ही रहा भाई, बस कल ऑफिस देखने और काम समझने में ही निकल गया। आज से मुझे कुछ टास्क दिए जाएंगे, अक्षत ने जवाब दिया।
वेद कुछ पल रुका और फिर बिना किसी भाव के बोला, मिस बंसल से मुलाकात हुई तुम्हारी? मिस बंसल का जिक्र होते ही डाइनिंग टेबल पर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। आराध्या और वंश ने एक दूसरे की तरफ देखा। मिस बंसल का पूरा नाम मेहिका बंसल था और उसी के साथ वेद की शादी होने वाली थी। सिर्फ वेद ही नहीं, वे सब भी हैरान थे कि वेद की शादी के बाद भी मेहिका ने कोई शिकायत क्यों नहीं की थी। हालांकि बंसल ग्रुप के ज्यादातर बिजनेस चौहान एम्पायर्स के साथ जुड़े हुए थे। इतने दिनों में कुछ बदला था तो सिर्फ ये कि जब भी कोई जरूरी मीटिंग होती तो वो मीटिंग मेहिका के बजाय उसके चाचा धर्मेश बंसल अटेंड करते थे। अक्षत ने नाम ऐसे हिलाया और कहा, वो पिछले 3 महीने से आउट ऑफ स्टेशन बाहर हैं और वहीं से काम देख रही हैं। अंकल ने बताया कि आज वो वापस ऑफिस आने वाली हैं। भाई, आपको एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए। जो भी हुआ उससे उन्हें काफी ठेस पहुंची होगी। मैं जानता हूं कि आपकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं था, पर उनका हक बनता है कि आप उन्हें सफाई दें, वंश ने वेद की तरफ देखकर कहा। मुझे भी यही लगता है। शिवांशा भाभी के आने की खुशी में हमने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। पहले तो फिर भी थोड़ी बात हो जाती थी, लेकिन इन दिनों उनसे बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं रहा। आराध्या ने वंश की बात का समर्थन किया। वेद ने कुछ पल सोचा और फिर अक्षत की तरफ देखकर कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे पता है कि मैं उसे मिलने भी बुलाऊंगा तो वो नहीं आएगी। हालांकि वेद की अचानक मेहिका से मिलने जाने के फैसले पर उन्हें थोड़ी हैरानी हुई, पर फिर भी उन्होंने सहमति जताई। नाश्ता करने के बाद वेद अक्षत के साथ बंसल ग्रुप जा रहा था। जाने से पहले उसने एक नजर अंदर की तरफ देखा कि शायद शिवांशा उठ गई होगी, लेकिन वो अब भी गहरी नींद में थी।
दूसरी तरफ नव्यांशी अरमान के घर पर थी। रात को देर से आने की वजह से उसकी नींद भी काफी देर से खुली थी। जब वो तैयार होकर बाहर निकली तो उसने देखा कि अरमान किचन में कुकिंग कर रहा था, जबकि डाइनिंग टेबल पर मनन हमेशा की तरह मोबाइल में गेम खेल रहा था। अरमान ने दिल्ली के एक पॉश इलाके में फ्लैट ले रखा था जो उनके घरों के मुकाबले काफी छोटा था। तुम चाहो तो हाउस हेल्पर्स रख सकते हो, तुम्हें खुद भी काम होता है तो कुकिंग और घर के काम कैसे मैनेज कर लेते हो? नव्यांशी अरमान की तरफ बढ़ते हुए बोली। कौन सा अरमान अकेले काम करता है जो तुम ऐसे बोल रही हो? तुम्हें पता भी है घर की क्लीनिंग मैंने की है और रूम मैनेज करने में चैंप ने हेल्प की है। ये तो हमसे कई बार बर्तन भी साफ करवाता है, मनन ने मुंह बनाकर कहा। नव्यांशी ने हैरानी से अरमान की तरफ देखा तो उसने सिर हिला दिया। वो बोला, बस ये समझ लो कि हर छोटा काम खुद करने की आदत हो गई है। वैसे भी मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ और तुम लोगों की तरह मेरा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है। फ्रीलांसिंग पर कुछ प्रोजेक्ट्स करता हूँ जिससे काम और घर दोनों मैनेज हो जाते हैं। अब नव्यांशी को समझ आ रहा था कि अरमान की लाइफस्टाइल इतनी सिंपल क्यों है। बहुत मुश्किल होता होगा ना अकेले सब कुछ संभालना, उसने धीमी आवाज में पूछा। सच कहूं तो पहले नहीं होता था, क्योंकि शिवांशा हमारे साथ रहती थी। कुकिंग वो देख लेती थी और बाकी काम हम वोनो। वो यहां होती थी तो मैं बेफिक्र होकर बाहर भी जा सकता था, पर क्या कर सकते हैं, मिस्टर चौहान ने हमसे हमारा सहारा छीन लिया। वैसे अगर ज्यादा दया आ रही है तो शिवांशा को आपस हमारे पास भेज सकती हो, अरमान ने हल्के अंदाज में कहा। बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल से मेरे भाई ने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा है और वो उससे प्यार करते हैं, उन्हें अलग करने के बारे में सोचना भी मत, नव्यांशी ने उसे घूरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मनन ने तुरंत मोबाइल टेबल पर रखा और नव्यांशी के पास आकर उसे घूरते हुए बोला, दूसरों की दुल्हन चुराना बैड बात होती है, हमें हमारी शिवी वापस चाहिए, पर दो प्यार करने वाले लोगों को अलग करना भी तो बैड होता है। तुम्हारी शिवी मेरे भाई के साथ खुश है, रही बात तुम्हारे खाने की तो उसके लिए हम कोई और इंतजाम कर लेंगे, नव्यांशी ने प्यार से मनन को समझाते हुए कहा। हालांकि अक्सर वो उसके साथ बहस करने लग जाती थी। किसी और की क्या जरूरत है, तुम हमारे घर रहने आई हो तो हमारे लिए खाना तो बना ही सकती हो, मनन ने फिर मुंह बनाया। नव्यांशी उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, जबकि अरमान जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी देखकर नव्यांशी ने गुस्से में देखा तो वो तुरंत चुप हो गया। अरे नहीं मनन, नव्यांशी हमारी मेहमान है और मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता, अरमान ने बात संभाली। फिर कुछ पल बाद टॉपिक बदलते हुए बोला, अच्छा नाश्ता तैयार है, ऐसा करो चैम्प को भी बुला लो, उसे कहो कि उसकी ऑनलाइन क्लासेस का भी टाइम होने वाला है। मनन ने हामी भरी और कमरे के अंदर चला गया। तभी नव्यांशी ने अरमान से पूछा, क्या तुम्हारा कोई और भी छोटा भाई है? वो मेरा नहीं, शिवांशा का भाई है, अरमान ने जवाब दिया। इसी बीच रोहन मनन का हाथ पकड़कर बैसाखी के सहारे बाहर आ रहा था। वो चल नहीं सकता था, ये देखकर नव्यांशी को मन ही मन बहुत बुरा लगा, ऊपर से वो उम्र में भी छोटा था। नव्यांशी के चेहरे पर अफसोस के भाव देखकर अरमान सब समझ गया। किसी भी स्पेशली चैलेंज बच्चे को देखकर मन में दया आना स्वाभाविक था। इससे पहले कि नव्यांशी कुछ बोलती, अरमान ने धीमी आवाज में कहा, हमारा चैंप बहुत ब्रेव है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसे इस तरह देखे, आई होप तुम समझोगी। नव्यांशी ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अरमान के समझाने पर वो रोहन के साथ बहुत ही सामान्य बर्ताव करने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ वेद अक्षत के साथ बंसल ग्रुप पहुंच चुका था। इत्तेफाक से उनकी गाड़ी मेहिका की गाड़ी के ठीक बगल में पार्किंग एरिया में आकर खड़ी हुई। मेहिका की गाड़ी देखते ही अक्षत बोला, वापस चलते हैं ना भाई, आई प्रॉमिस आगे से कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे अपनी कंपनी में ही इंटर्नशिप करने दीजिए। अक्षत कभी ये नहीं देख सकता था कि वेद किसी के सामने शर्मिंदगी महसूस करे। माना मेहिका का दिल दुखा था और गलती उनकी तरफ से हुई थी, पर उसने हमेशा वेद को गर्व से सिर ऊंचा करके बात करते देखा था। आज वेद की आंखों में गिल्ट देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। अक्षत को अपनी परवाह करते देख वेद हल्का मुस्कुराया और बोला, गलती मेरी तरफ से हुई है,
और शर्मिंदा तुम हो रहे हो। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। लेकिन भाई, अक्षत ने कुछ कहना चाहा, पर वेद ने उसकी बात काटते हुए कहा, जिस काम के लिए आए हो वही करो। वेद के सख्त लहजे के कारण अक्षत को जाना ही पड़ा। लगभग 2 मिनट बाद मिहिका और वेद एक साथ अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकले। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। क्या लगता है उनकी मुलाकात कैसी रहने वाली है? चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।